नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं जो हर समय शमशान घाट में अपनी सेवाएं देते रहते हैं और यहाँ पर चिताओं को आग लगाना हो या फिर उसके बाद शमशान घाट की साफ सफाई में इनका योगदान लगभग 35 साल से है। लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि उस घटना ने अब उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अब आगे की कहानी मैं उनके ही शब्दों में जारी रखूँगा। नमस्कार, मेरा नाम रमन लाल है और मैं हरिद्वार के शमशान घाट में 32 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने यहाँ रोज़ लगभग सैकड़ों लाशें आती हैं और मैं और मेरे साथ काम करने वाले सभी कर्मचारी और सहयोगी फिर हम रोज़ उन चिताओं को जलाते हैं। मैं भी अक्सर हर रोज़ लगभग 10 से 12 चिता जलाता हूँ, पर मेरे साथ एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं आज उस दिन को याद करके सहम जाता हूँ। अक्सर हम लोग चिताओं में आग लगाते हैं और जब चिता जल जाती है तो सभी चिताओं की राख एक साथ सफाई करते समय झाड़ू से गंगा में गिरा दिया करते हैं। पर एक दिन शमशान घाट में एक डेड बॉडी को लेकर उसके परिजन आए। मैंने और मेरे साथी समीर ने उनके परिजनों को कहा, लकड़ी ले आओ और लाश को गंगा जल से नहलाकर इधर रख दो। उस डेड बॉडी के सभी परिजन लकड़ी लेने गए हुए थे, बस उनके साथ का एक ही व्यक्ति उस लाश के साथ था। बात ही बात में मैंने उससे पूछा, ये किसकी बॉडी है? उसके साथ जो व्यक्ति था उसने कहा, ये मेरी मौसी है। वो व्यक्ति अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, इनकी शादी को अभी एक साल भी नहीं हुआ था। मैंने पूछा कि अचानक कुछ तबीयत वबीयत खराब थी क्या? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं मौसी बिल्कुल ठीक थी, कल रात अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई, पता नहीं क्या हुआ। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसे दिन भर में सैकड़ों लोग आते हैं। तब तक उस लाश के परिजन लकड़ियाँ लेकर आ गए। उसके बाद हम देह संस्कार का कार्यक्रम शुरू कर रहे थे। मैं और समीर चिता के लिए लकड़ियाँ बिछा रहे थे। उस महिला की ज़्यादा उम्र तो रही नहीं होगी, इसलिए पतले दुबले शरीर की थी और वज़न भी बहुत कम था और लकड़ियाँ भी कम ही लगानी पड़ी। हम लोगों ने लकड़ियाँ बिछाई और उनके परिजनों को कहा, तुम इस लाश को अब चिता पर लिटा दो। उन लोगों ने वैसा ही किया, 4-5 लोगों ने उठाकर लाश को चिता पर रख दिया। तभी ऊपर से थोड़ा कपड़ा मुंह के पास से उड़ गया तो मेरी नज़र उस डेड बॉडी पर पड़ी और मैं देखता ही रह गया, क्योंकि उस महिला की आंखें ऐसा लग रहा था खुल रही है और बंद हो रही है। मानो ऐसा लग रहा था कि आंखें लबलब हो रही हैं और ऐसा लग रहा था कि शायद आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। मैं यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक हमने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। अब उनके परिवार वाले अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार थे और पंडित जी ने दाह संस्कार का क्रियाक्रम शुरू कर दिया था। तभी मैं समीर को थोड़ा किनारे लेकर गया और मैंने कहा, समीर इस डेड बॉडी में जान है, क्योंकि मैंने खुद देखा, पलकें झपक रही हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे सांस चल रही हो। समीर ने मेरी बात सुनकर कहा, रमन तू पागल तो नहीं हो गया, कैसी बात कर रहा है यार, मुर्दा है वो, मुर्दे में कभी भी सांसें चल सकती है क्या? क्या यार, हम रोज़ चिता जलाते हैं, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तेरा दिमाग ख़राब तो नहीं है? चल जल्दी अब उस चिता को जलाना है। मैंने उस समय तो समीर को कहा, हाँ चलो। उसके बाद मैं अपने आप को समझा रहा था, क्या पता ये मेरा कोई वहम हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है, वहम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 30 साल से ज़्यादा ज़िंदगी मेरी बीत गई इसी शमशान घाट में चिता को जलाते हुए, लेकिन आज तक तो कभी वहम नहीं हुआ, फिर आज कैसे हो रहा है? पर फिर भी मैं समीर के साथ चला गया उस चिता को जलाने के लिए। उसके परिवार वालों ने उसको आग दी और हमने फिर जलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक जिसको मैं अपना वहम समझने की कोशिश कर रहा था, पर तभी ऐसा लगने लगा कि उस चिता से रोने और तड़पने की आवाज़ आ रही थी। मैंने तुरंत समीर से कहा, समीर अब देखो मैं क्या कह रहा था, इसके अंदर जान है, जिंदा जला दी तुम लोगों ने एक महिला को। मैं जोर जोर से बोल रहा था, वहाँ उस डेड बॉडी के परिवार के सदस्य मौजूद थे और साथ ही साथ शमशान घाट में बहुत से लोग थे, पर सभी मेरी बात सुनकर चौंक गए और मुझे बड़ी विचित्र निगाहों से देखने लग गए। उसके परिवार के लोग तो वैसे ही दुखी थे, इसलिए वो मुझे कहने लगे, आपको शर्म नहीं आती ऐसा मजाक करते हुए? हम वैसे ही इतना परेशान हैं और आप हमारी भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, हम पर ऐसे ही दुखों का पहाड़ फूट पड़ा है, पर आप ऐसी जगह पर ऐसा गंदा मजाक कर रहे हो। उनके परिवार के लोग मुझे पागल या नशेड़ी बता रहे थे, लेकिन सच बताऊं तो मुझे उस महिला की आवाज़ उस समय बहुत तेजी तेजी से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो दर्द से कर्राह रही हो। उसके बाद मेरे साथ के लोगों ने और समीर ने मुझे वहाँ से दूर कर दिया। और समीर ने मुझसे आकर कहा, रमन तू पागल हो गया क्या, कैसी बात कर रहा है, हम भी तो कर रहे हैं काम, हमें क्यों नहीं सुनाई तेरी कोई आवाज़, हमें क्यों नहीं दिख रहा कि वो पलके चुपका रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो तुझे ही क्यों दिखाई दिए यार, तू तो शराब भी नहीं पीता, ऐसा क्या हुआ तेरे साथ। समीर अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है, तभी कहता हूँ घर जाकर रात को खाना खाकर तो सो जाया कर जल्दी, लेकिन तुम फिल्में देखते हो ना रात भर, तूने कोई फिल्म वगैरह देखी होगी या सपना देखा होगा। समीर की बातें सुनकर अब मेरी आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि 30 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था, इस शमशान घाट में आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए मैंने समीर को समझाते हुए कहा, ना मैंने कोई सपना नहीं देखा और ना ही कोई फिल्म देखी, पर मैं आज सच कह रहा हूँ, वो महिला जिंदा थी जिसको जलाया जा रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से उसकी आवाज़ सुनी थी। पर समीर ने मुझे कहा, सच में भाई तू पागल हो गया है, मुझको लगता है तुझे आराम की सख्त ज़रूरत है, अब तू छुट्टी मांगकर गांव चले जा, अपने कुछ दिन घर वालों के साथ रहे और जब तुझे सही लगे तब तू काम पर वापस लौटना और फालतू की बातें मत कर, अगर तुझे चलना है चिता जलवाना है तो चल, क्योंकि मैं भी तेरे साथ यहाँ पर हूँ तो चिता कौन जलाएगा। समीर की बात सुनकर मैंने कहा, समीर ये चिता मैं नहीं जलवा पाऊँगा, तू जा। उसके बाद समीर वहाँ से गया और शमशान घाट के एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर उसने उस चिता को जलाया। चिता जली, अंतिम संस्कार पूरा हुआ और उस डेड बॉडी के परिवार के सभी लोग स्नान करके अपने घर जा चुके थे। लगभग शाम के 7:30 बज रहे होंगे, मैं भी एकांत में ही बैठा हुआ था, तभी मेरे पास समीर और उस चिता का अंतिम संस्कार करवा रहे पंडित जी मेरे पास आए। पंडित जी ने मुझे कहा, हाँ भाई उतर गया उस महिला की चिता का बुखार की नहीं, उस समय तो वहाँ पागलों जैसी बात कर रहा था, तो इतने सालों से यहाँ चिता जलाता है, आज तक ऐसा हुआ है कि कोई मुर्दा चिता के अंदर से चीखने चिल्लाने लगे, वो सब तेरा मजाक उड़ा रहे थे या फिर तुझे पागल कहना चाह रहे थे। पंडित जी की बात सुनकर मैंने कहा, मैंने जो देखा है वहाँ वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे उस आंखों से आंसू बहते हुए दिखे थे और मैंने देखा कि जब उसको चिता पर लिटाया जा रहा था तब उस महिला की पलकें झपक रही थी। मैं मानने को तैयार नहीं था कि वो मेरा कोई वहम है। तब पंडित जी ने मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लिया और कहा, ना तो उस महिला को जानता है ना तो कभी उसे देखा, तो फिर तेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है। तब मैंने पंडित जी से कहा, यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं, मुझे ही क्यों उसकी चीखने की और रोने की आवाज़ सुनाई दी और आप में से किसी को नहीं। पंडित जी ने फिर मुझे कहा, फिर एक काम करना, तुम अब 15 या 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर चले जाओ, तुमने काफ़ी समय से छुट्टी भी नहीं ली और लगातार काम कर रहे हो, थोड़ा आराम करना फिर काम पर वापस आना, चलो अब साफ सफाई करवा दो, अब टाइम खत्म हो गया है। मैंने पंडित जी से कहा, हाँ ठीक है, क्योंकि शमशान घाट में 8 बजे के बाद कोई भी चिता नहीं चलाई जाती, 8 बजे सब साफ सफाई करके घर चले जाते हैं और हम लोगों को सुबह 7 बजे यहाँ वापस आना होता है, उसके बाद हम काम पूरा करके अपने अपने घर चले गए। मैं घर में सिर्फ अकेला ही रहता था, बाकी सब परिवार के लोग हमारे गांव में रहते हैं। आज घर आकर मैंने नहाया धोया और सीधा बिस्तर में जाकर बैठ गया। अक्सर मैं घर आकर पहले खाना बनाता था, फिर खाना खाकर घर वालों से फ़ोन पर थोड़ी बातचीत कर लेता था, पर आज मेरे साथ दिन में जो घटना घटी थी उसकी वजह से मेरा मन आज थोड़ा बेचैन था, इसलिए मैं आज शमशान घाट के ढाबे पर ही खाना खाकर आया था और घर आकर नहाकर बिस्तर पर लेट गया। अभी बिस्तर पर लेटे हुए बस मैं यही सोच रहा था कि आज ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं अपने आप को यही कह रहा था कि वो जिंदा थी, पर अगर वो जिंदा थी तो सिर्फ मुझे ही क्यों पता चल रहा था, वहाँ तो बाकी बहुत सारे लोग थे, उन्हें क्यों नहीं कुछ भी पता चला, सिर्फ मुझे ही क्यों रोने की आवाज़ आ रही थी, बाकियों को क्यों नहीं आई। ये सोचते सोचते लेटे लेटे मेरी आँख लग गई, पर अचानक मेरी आँखें खुली और मैं उठा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मेरा एक ही कमरा है जो मैंने किराए पर ले रखा था। मैं नींद में ही उठा, मैंने सोचा कि क्या पता किराएदार में से ही कोई होगा, कोई ज़रूरत हो किसी काम की, यही सब सोचते हुए मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन मुझे बाहर कोई नहीं दिखा। अंधेरा था, मैंने इधर उधर देखा, मुझे फिर कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने बाहर की लाइट ऑन करी, पर कोई होता तभी तो दिखता। मुझे लगा क्या पता ऐसे ही कोई होगा जो दरवाजे को खटखटाकर चला गया होगा। मैं जैसे ही वापस अंदर जा रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं तुरंत पीछे घूमा पर पीछे कोई नहीं था। मैं दिन भर से वैसे ही परेशान था, इसलिए मैं ज़्यादा ना सोचते हुए जैसे ही दरवाज़ा बंद करा तो मुझे ऐसा लगा कि बाहर कोई चल रहा हो। किसी के पायल की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मेरे कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हो और इधर उधर टहल रहा है। पायल और चूड़िया की आवाज़ बड़ी तेज तेज से आ रही थी। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और लाइट जलाई और जैसे ही बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। ये मेरा वहम है क्या, मैंने यही सोचा, पर वो वहम कैसे हो सकता है। मैं अपने पूरे होशो हवाश में खड़ा था। मैं यही सब सोच रहा था कि अब चाहे कोई भी हो मुझे क्या। गुस्से में मैं अंदर आ गया और मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, लाइट का बटन ऑफ किया और फिर जाकर अपने बिस्तर में लेट गया। लगभग 15 मिनट के बाद फिर ऐसा लगा कोई दरवाज़ा बड़ी ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है। अब की बार खटखटाने की आवाज़ बड़ी तेज़ तेज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई आवाज़ भी मार रहा है। आवाज़ साफ साफ समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन इतना था कि वो कह रही थी, रमन दरवाज़ा खोलो, रमन दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो। मैं उठा, दरवाजे तक गया तो साफ लग रहा था कि बाहर कोई है और दरवाज़ा खटखटाकर मुझे आवाज़ मार रहा है। मैंने सोचा अब तो पक्का मकान मालकिन ही होगी, इसलिए मैंने फिर तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि अभी भी बाहर कोई नहीं था। बाहर इस रात में पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने बगल के कमरे में मकान मालकिन को आवाज़ मारी और दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और नींद में कहा, क्या हुआ रमन? मैंने जवाब देते हुए कहा, आंटी मुझे आवाज़ मारी थी क्या? आंटी ने कहा, नहीं तो, मैं तो सो रही थी, बाकी लोग भी घर में सो ही रहे, किसी ने नहीं बुलाया, क्यों क्या हो गया? आंटी का जवाब सुनकर मैंने कहा, नहीं आंटी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने आवाज़ मारी, मुझे लगा कोई घर का होगा। आंटी ने फिर कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बोलकर आंटी चली गई अंदर और उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कहा, ऐसे ही होगा, क्या पता। मैं भी अपने कमरे में आकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं भी फिर जाकर अपने बिस्तर में लेट गया। लगभग 7 या 8 मिनट ही हुए होंगे कि ऐसा लगा जैसे कमरे के अंदर ही कोई टहल रहा हो। किसी के पायल की आवाज़ और चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। अब मैं थोड़ा सा डर गया था। 32 सालों से जो मैं लाशों को जला रहा था, मुझे कभी ऐसा डर नहीं लगा था जैसा डर आज मुझे लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई महिला इस कमरे में है और इधर उधर टहल रही है। तभी मेरे मन में पता नहीं क्या आया और मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, कौन हो तुम, कौन हो? पर ऐसा बोलने के बाद भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन थोड़ी देर के बाद पायल की आवाज़ और चूड़ियों की आवाज़ जो थी वो सब बंद हो गई। उसके बाद मैं अपने बिस्तर पर लेटा ही हुआ था, तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर मेरे बगल में लेट गया है। मैंने कंबल ओढ़ रखा था, तभी मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा कंबल दूसरी तरफ खींच लिया। मैं एकदम झटके से उठा और मैंने अपना कंबल तुरंत हटाया, लेकिन पलंग पर कोई नहीं था। मुझे लगा हो ना हो दिन वाली घटना का ही असर हो रहा है। पर ऐसे ही करते करते पता नहीं कब रात में मेरी आँख लगी और मैं सो गया। लेकिन सुबह मैं उस दिन थोड़े लेट से उठा। अक्सर मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था, नाश्ता वगैरह बनाकर खा पी कर शमशान घाट में अपने काम पर निकल जाता था। लेकिन उस दिन मैं 8 बजे तक सोया रहा, पर मुझे उस दिन काम पर तो जाना ही नहीं था, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। क्योंकि आज तो मुझे अपने गाँव जाना है। कल तक मैं सोच रहा था कि नहीं लोगों को कहने दो, पर मैं तो काम पर आऊँगा। लेकिन आज मैंने भी सोच लिया कि अब मुझे गाँव जाना चाहिए। रात को जो कुछ भी हुआ मेरे साथ वो सब मुझे बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने अपना थोड़ा सामान पैक करा और आंटी को कह दिया, आंटी मैं गाँव जा रहा हूँ। आंटी मेरी बात सुनकर हैरान थी कि अचानक मैं गाँव क्यों जा रहा हूँ। इसलिए आंटी ने मुझसे कहा, रमन घर पर सब ठीक तो है, क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने आंटी को जवाब देते हुए कहा, नहीं आंटी मैंने छुट्टी ली है और कुछ दिनों के लिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। आंटी ने मुझे फिर कहा, इस बार तुमने बताया नहीं, वैसे तो 1 हफ्ते पहले ही बता देते हो कि मैं जाने वाला हूँ घर। मैंने कहा, वो आंटी बस अचानक ही घर जाने का सोचा। इतना बोलकर मैं वहाँ से निकल गया। शाम के 6 बजे की ट्रेन थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा जल्दी जाकर तत्काल टिकट ले लूँगा। मैं घर से सही समय पर निकला और जाकर तत्काल का टिकट ले लिया और ट्रेन में बैठ गया। मुझे वाराणसी जाना था। मैं ट्रेन में बैठा ही था और बाकी बहुत लोग थे ट्रेन में। रात में मैंने देखा गेट के पास एक शादीशुदा नया जोड़ा होगा शायद, वो गेट के पास खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। रिजर्वेशन डिब्बा था, इस वजह से सब अपनी अपनी सीट पर ही बैठे थे। बस वही दो अपनी सीट छोड़कर गेट पर खड़े थे। ट्रेन में भीड़ भी काफ़ी थी, सभी सीट भरी हुई थी। पर तभी मैंने देखा कि वहाँ दोनों आपस में बात करते करते कुछ जो बहस करने लगे और अचानक उस लड़के ने अपने साथ खड़ी लड़की को एकदम से धक्का मार कर नीचे गिरा दिया और उस लड़की की तेज़ तेज से चीखने चिल्लाने की आवाज़ काफ़ी दूर तक आ रही थी और ट्रेन भी तेज़ी से चल रही थी। पर आसपास के लोग उस लड़के को कोई कुछ भी नहीं कह रहा था, पर मैंने ज़ोर ज़ोर चिल्लाते हुए कहा, इसने लड़की को नीचे फेंक दिया। अरे कोई चैन खींचो ट्रेन की, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं, इसने एक लड़की को नीचे फेंक दिया। लेकिन मेरी बात का किसी पर कोई असर ही नहीं हो रहा था और कोई भी उस लड़के को कुछ नहीं कह रहा था। पर मैंने सोचा अब नहीं, अब मैं चैन खींच लूँगा, मैं इन लोगों की तरह शांत नहीं बैठूँगा। इस लड़के ने एक मासूम लड़की को नीचे फेंक दिया और सब मूक दर्शक बने देख रहे थे, मैंने कहा। लेकिन मैं चुपचाप नहीं बैठूँगा, इस आदमी को इसके किए की सज़ा ज़रूर दिलाकर रहूँगा, मैं इसे पुलिस में पकड़ाकर ही दम लूँगा। पर तभी ऐसा लगा किसी ने मुझे हाथ से हिलाकर उठा दिया। मैं ट्रेन में बैठे बैठे सो गया था, मतलब मैं सपना देख रहा था और मेरे आगे टिकट चेकर खड़ा था। टीटी ने मुझे कहा टिकट दिखाओ, मैंने उसको टिकट दिखाया और अपना चेहरा रुमाल से पोंछा क्योंकि मुझे बहुत पसीना आ रहा था। तो मेरी नज़र गेट पर पड़ी, पर बोगी का गेट बंद था और सभी सीट पर पैसेंजर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बोगी में कोई भी सीट खाली नहीं है और मुझे वो शादीशुदा जोड़ा भी कहीं नहीं दिखा। उसके बाद मैं अपनी सीट पर बैठा रहा और ट्रेन अगले दिन वाराणसी स्टेशन पर रुकी। मैं ट्रेन से उतर कर सीधा बस स्टैंड पर गया क्योंकि हमें अपने घर जाने के लिए बस करनी पड़ती थी। बस वाला इंतज़ार कर रहा था सभी सवारियों का। बस में सभी सवारी फुल हो गई और बस भी निकल गई। अभी हम कुछ ही आगे गए होंगे तभी मैंने देखा कि फुटपाथ पर चल रहे एक साथ एक लड़का और एक लड़की, अचानक लड़के ने अपने साथ चल रही लड़की को धक्का दिया और वो लड़की सीधा आकर रोड पर गिरी और उस पर जिस बस में हम बैठे थे वही बस चढ़ गई और लड़की की चीखें बड़ी ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही थी। लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और ड्राइवर गाड़ी को लगातार चला रहा था। तभी मैंने कहा भैया गाड़ी रोको जल्दी, वहाँ रोड पर पड़ी उस लड़की पर बस चढ़ गई। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक मारी और कहा क्या हुआ। मैंने उसको बताया पीछे लड़की रोड पर गिरी थी जिस पर बस चढ़ गई, पर सबने पीछे देखा तो पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था। ड्राइवर और कंडक्टर ने मुझे बड़े गुस्से में कहा भाई पागल हो गया क्या तू, सुबह सुबह शराब पी ली क्या, फालतू की बकवास कर रहे हो, अगर तुमको जाना है तो जाओ वरना उतर जाओ यहीं पर। ड्राइवर और कंडक्टर के साथ बस में और यात्री भी मुझ पर चिल्ला रहे थे, पागल हो क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। पर मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, पर मैं अब अपने आप से ही परेशान हो चुका था क्योंकि मेरे साथ पता नहीं दो दिन से क्या हो रहा था, पहले शमशान घाट में, फिर घर पर, फिर ट्रेन में और अब बस में। मैं अपने आप से ही सवाल कर रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी जहाँ मुझे उतरना था उस जगह बस आई और कंडक्टर ने मुझे कहा भैया उतर जाओ, पर मुझे कंडक्टर की बात सुनाई नहीं दी, शायद मैं नींद में था इसलिए कंडक्टर ने मुझे हाथों से हिलाया और कहा भैया आपका स्टॉप आ गया। इस बार मैंने कंडक्टर की बात सुन ली और कहा हाँ अच्छा। उसके बाद मैंने अपना सामान उठाया और बस से उतर गया। पास में ही हमारा गाँव था इसलिए मैं पैदल ही निकल गया और पैदल चलते चलते बस वही सब बातें सोच रहा था जो सब घटना मेरे साथ पिछले 2-3 दिन से घट रही थी। यह सब सोचते हुए मैं अपने घर पहुँच गया। घर में मेरे पिताजी, मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब मेरा इंतज़ार बाहर ही कर रहे थे। मैंने सबको देखा और तुरंत अपने पिताजी के पास जाकर उनसे लिपटकर रोने लगा। मैं बड़ी तेज़ तेज़ से हिचकी ले रहा था, रो रहा था। तब मेरे पिता समेत घर के सभी लोगों ने मुझे संभाला और मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने अपने साथ घटी सारी घटना उन सभी को बता दी। मेरे पिताजी ने कहा तुम नहा धोकर पहले खाना खा लो, फिर थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं नहा धोकर खाना पीना खाने के बाद मैं लेट गया और शाम को लगभग 5 बजे मेरी आँख खुले। पूरा दिन मैं लेटा रहा था। शाम को मैंने अपने पूरे परिवार के साथ समय बिताया, बातचीत करी, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े दिनों के बाद मैं अपने परिवार के लोगों से मिल रहा था और रात को खाना पीना खाकर सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में मेरी पत्नी भी आ गई। हम लोगों ने काफ़ी देर तक बात करी और फिर सो गए। अचानक रात को मेरी आँखें खुली। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैं उठा और दरवाज़ा मैंने खोला और बाहर देखा तो मेरी पत्नी खड़ी। मैंने उसे कहा, बाहर कैसे आई तुम? अभी तो अंदर ही मेरे साथ लेटी हुई थी। पर मेरी पत्नी कुछ नहीं बोली और गांव में सड़क की तरफ भागने लगी। मेरी पत्नी की पायल की आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ खनक रही थी। मैं भी चिल्लाता हुआ उसके पीछे पीछे भाग रहा था और मैं बोल रहा था, रुको रुको, क्या हुआ? लेकिन मेरी पत्नी चीखते चिल्लाते हुए लगातार भाग रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी को आखिर ये क्या हो गया। मेरी पत्नी गांव में जंगल की तरफ भागने क्यों लगी? और मैं भी उसके पीछे चिल्लाता हुआ तेज तेज भाग रहा था। तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, मेरे पिताजी और मेरे परिवार के लोग मेरे को बुला रहे हैं और मेरी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। मैं वहीं खड़े होकर रोने लगा और मेरी पत्नी जंगल के अंदर जा चुकी थी। मेरे पिताजी ने तुरंत मुझे पकड़ा और कहा, रमन क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? वैसे मेरी पत्नी का नाम नीतू है। मैंने कहा, नीतू को पता नहीं क्या हुआ, घर से निकलकर चिल्लाते हुए भाग रही है और जंगल की तरफ भाग गई। मेरी बात सुनकर मेरे पिताजी ने कहा, पागल हो गए हो क्या बेटा? नीतू साथ में तो है हमारे और नीतू मेरे पीछे ही खड़ी है। वो मुझे पकड़कर रोने लगी और रात होते हुए कह रही थी, क्या हो गया आपको, आप अचानक क्यों घर से निकलकर भागने लगे? उसके बाद मुझे उस रात नींद नहीं आई। शमशान घाट में काम करने वाला बंदा आज इस हालत में था। सोच लो आप वो रात कैसी बीती। और अगले दिन मेरे पिताजी मुझे एक तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए। उन्होंने झाड़ फूक और पूजा वगैरह करी और मेरे से सब कुछ पूछा कि क्या हुआ था आपके साथ। मैंने शुरू से सारी घटना बाबा को बताई। बाबा ने मेरे गले में एक तावीज़ बांधी और हाथों में मंत्र पढ़कर एक धागा बांध दिया। बाबा ने बताया कि उस लड़की की आत्मा तुम्हें कुछ बताना चाहती है, शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा इसलिए वो तुम्हें बताना चाह रही है। बाबा की बात सुनकर मैंने कहा, बाबा मैं 32 साल से शमशान घाट में चिता जला रहा हूँ पर आज तक तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और मैं तो महिला को जानता भी नहीं था और ना ही मैंने उसे कभी देखा था। बस मैंने शमशान घाट में उसकी लाश देखी, वो भी जलाते समय, तो फिर ऐसा क्यों? तांत्रिक बाबा ने फिर मुझे बताया, आत्मा किसी एक को ढूंढ लेती है जो उसकी मदद कर सके, वो तुम्हारे जरिए अपनी मदद करवाना चाहती होगी, शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा इसलिए तुम्हारे ज़रिए अपने कातिलों का पता बताना चाह रही होगी। फिर मेरे पिताजी ने बाबा से कहा, बाबा आप ऐसा करो कि वो दोबारा कभी ना रमन को दिखाई दे और ना ही उसे परेशान करे। बाबा ने कहा, ज़्यादा मत सोचो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम गले में ये तावीज़ पहन कर रखना और हाथ में धागा बांधे रहना, सब ठीक रहेगा। उस दिन से मुझे ऐसा कुछ भी नहीं एहसास हुआ और मैं लगभग 2 महीने तक अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहा। उसके बाद फिर वापस आकर शमशान घाट में काम कर रहा। अब मैं हर रोज़ 10 से 12 चिता चलाता हूँ। दोस्तों, अगर आप इन स्टोरीज़ का वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट कर सकते हैं।